الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدما، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله؟ فقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی گئی، اس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، مومنین کی ماں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، یہ اسلام کی وہ خاتون ہیں کہ امت تک، مسلمانوں تک حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آدھا نہیں تو ایک تہائی دین ان کے ذریعے سے پہنچا. اتنی روایتوں کے راوی ہیں، اتنی زیادہ حدیثوں کو انہوں نے حضور سے سن کر، حضور کو دیکھ کر ہم تک نقل کیا. وہ باتیں بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرہ شریفہ کے اندر ہوتی تھیں وہ بھی، اور وہ باتیں بھی جو مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھیں اور حجرے کے قریب ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ اس کو سن پاتی تھیں، کیونکہ مسجد میں ہونے والی آواز ان کے حجرے میں پہنچتی تھی، تو کبھی کان لگائے بغیر، کبھی کان لگا کر وہ سننے کی کوشش کرتی تھی اور اس کو محفوظ رکھتی تھی اور امت تک اس کو پہنچایا. نہ صرف ان کو سنا فکر سے، بلکہ ان کو یاد رکھا اور ان کو سمجھا بھی. امت کی فقیہہ ہیں وہ، مسائل کو، دین کو، مزاج نبوت کو، منشاء شریعت کو اچھی طریقے سے سمجھتی تھیں وہ. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ کو اہم امور میں ضرورت پیش آتی تھی تو حضرت عائشہ سے بعض دفعہ رجوع کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ. تو امت میں اس خاتون کا یہ مقام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین بیوی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دن رات کے معمولات کو، کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے، ان کی وہ امین ہیں، ان کی امانت دار ہیں، ان کی محافظ ہیں، ان کو دوسروں تک نقل کرنے والی ہیں. اس واسطے یہ امت پر ان کا بہت بڑا احسان. وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول جو دیکھتی تھی، کہ عموماً اکثر و بیشتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو بہت طویل طویل قیام کرتے تھے، بہت لمبا لمبا قیام کرتے تھے. کتنا لمبا قیام کرتے تھے، اس کی تشریح دوسرے صحابہ سے منقول ہے. حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے کہ رسول اللہ، آپ کے ساتھ میں قیام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر حضور کے ساتھ شریک ہو گئے. جب آپ قیام اللیل 8 رکعت یا 11 رکعت فطر کی ملا کر جب رات میں آپ پڑھتے تھے، تھوڑی رات کے ابتدائی حصے میں عشاء ادا کر لی، اس کے بعد مختصر سی سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد حضور قیام فرماتے تھے، پھر اس کے بعد رات کا آدھا یا اس سے زیادہ حصہ نماز میں تہجد میں گزرتا تھا. فجر سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے واسطے، چاہے فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے مختصر سا قیام کرتے تھے، استراحت آرام فرماتے تھے حضور، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے فجر ادا فرماتے تھے. تو یہ مختصر سے رات کے آرام کے بعد میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت حذیفہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہو گئے جماعت میں. آپ نے رکعت باندھی تو وہ آ کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے، لمبی پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کو شروع کیا. سورہ بقرہ ویسے ہی 2.5 پارے کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا تلاوت کیا، پھر ایسے نہیں جیسے حفاظ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بس تیز پڑھنے والے، شبینے پڑھنے والے، اس طرح سے نہیں، بلکہ انداز حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ ہر آیت پر، ہر وقف کرنے کی جگہ، جہاں پر بھی سانس توڑنا تھا وہاں آپ رکتے جاتے تھے، ترسیل جسے کہتے ہیں، اس طرح پڑھتے جاتے تھے. اور کہیں مضمون کے حساب سے، پھر مضمون کی رعایت بھی ہو رہی ہے، جو اس کے اندر باتیں آئی ہیں، کہیں جنت کا ذکر آیا तो वहाँ रुक करके अरबी ज़बान ही के अंदर, चूँकि हुज़ूर पसल्लम तो अरबी हैं, नबी अरबी हैं, तो आप अरबी ज़बान में अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह जिस जन्नत का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो मुझे अता फरमाई, जिस रहमत का आप जिक्र फरमा रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमाई। अज़ाब का जिक्र आया तो अज़ाब की आयत के पढ़ने के बाद, तिलावत के बाद अज़ाब से पनाह मांगी जा रही, उसकी दुआ की जा रही। ऐसे ही जहाँ पर अल्लाह की तस्बीह का जिक्र आया, रुक करके अल्लाह की तस्बीह बयान की जा रही, अल्लाह की हमद का बयान आया तो फिर अल्लाह की हमद बयान की जा रही। यहाँ एक मसला, चूँकि अहादीस में साबित है कि दौरान नमाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह किया करते थे, आयतों के बीच में रुक कर तहमीद किया करते थे, अल्लाह की हमद बयान करते थे, दुआएँ करते थे, तो क्या इसकी इजाज़त है? ये चीज़ समझ लेने की है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ये जानना चाहते हैं। एक है फ़र्ज़ नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ों में इस किस्म की का दुआ करना कहीं भी मनकूल नहीं है। जो आमतन हम पढ़ते जमात से अदा करते हैं नमाज़ें, हुज़ूर पाक सल्लम का भी ज़िंदगी भर का मामूल रहा, लेकिन रिवायतों से ये साबित नहीं है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस किस्म की दुआएं की हों जब भी इस किस्म का मज़मून आया। जो आयतें तहज्जुद में पढ़ते थे, रहमत की आयतें थी तो रहमत की दुआ, रहमत के मिलने की दुआ है, अज़ाब की आयतें हैं तो उनसे पनाह मांगने की दुआ है, वही आयतें अगर फ़र्ज़ नमाज में पढ़ी जा रही हैं तो हुज़ूर पाक सल्लम यह एहतमाम नहीं फरमा रहे। तो इससे समझ में ये आया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर तो इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। नफिल नमाज़ें हम पढ़ रहे हैं, सुन्नतें हम पढ़ रहे हैं और उसमें इस किस्म की आयतें आई और मज़मून हमको समझ में आ रहा है कि क्या है, तो उस वक्त फिर इस किस्म की दुआ मांगने की इजाज़त है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ जो समझने की है वो ये कि हमारी ज़बान अगर अरबी हम जानते हैं और सही अरबी हम बोल सकते हैं, जो कुरान वाली अरबी है, क्लासिकल अरबी, अरबियतुल फुसहा, अगर हम वो बोल सकते हैं तो फिर उसके ज़रिए से उस ज़बान में हम अल्लाह से मांग सकते हैं। अगर हमें अरबी ज़बान नहीं आती, उर्दू ज़बान में हम मांगने लग जाएंगे तो नमाज़ ख़राब हो जाएगी। इस वास्ते इसका एहतमाम होना कि हम या तो अरबी ज़बान में मांगे, या फिर अगर हम अरबी नहीं जानते हैं तो दिल दिल में मांगे, ज़बान से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जन्नत का जिक्र आया उस आयत के ख़त्म होने के बाद में रुक जाएँ और उसके बाद फिर दिल ही दिल में दुआ करें, ज़बान को हरकत दिए बगैर कि अल्लाह जिस रहमत का जिक्र है उसमें हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमाइए। अज़ाब की आयतें आई तो उनके तिलावत करने के बाद ज़बान से कुछ नहीं पढ़ें क्योंकि हम अरबी नहीं जानते और दूसरी ज़बान बोलने से नमाज़ ख़राब होगी, तो हम दिल ही दिल में दुआ करें कि अल्लाह जिस अज़ाब का जिक्र है उसे हमारी हिफाजत फरमाइए। इस किस्म के जहाँ भी मज़मून है, तस्बीह और तहमीद का जिक्र का तो ताल्लुक है अरबी ही से है, हम अल्लाह के हम तस्बीह और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह, सुबहान अल्लाह वगैरह, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह, जो जिक्र है अल्लाह का, ये तो उमूमन सब मुसलमान अरबी के अंदर किया करते हैं, दौरान नमाज दौरान तिलावत भी इसके करने की इजाज़त है। अलगरज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि एक सूरह बकरा को शुरू फरमा दिया और बिल्कुल इत्मीनान के साथ में ठहर ठहर कर तिलावत फरमाई जा रही, एक एक आयत पर रुक रुक कर वक्फ़ की जगह वक्फ़ करते हुए और दुआ की जगह दुआ करते हुए। सूरह बकरा ख़त्म होगी तो समझे कि अब ख़त्म करते होंगे, अब रुकू किया जाता होगा। फिर उसके बाद आपने सूरह आले इमरान शुरू कर दी, आले इमरान वो भी काफ़ी तवील है, सूरह बकरा के करीब करीब है, वो भी हुजूर ने ख़त्म कर दी, उसके बाद फिर रुकू किया। अच्छा, रुकू कितना तवील होता था, हमारे रुकू सजदे तो अजीब हैं। हुज़ूर पाक सल्लम के रुकू सजदों की खासियत ये थी कि आपका रुकू और सजदा भी क़ियाम जितना तवील होता था, रुकू भी उतनी ही देर करते थे जितनी देर क़ियाम करते थे, सजदा भी उतनी देर करते थे जितनी देर क़ियाम करते थे। ये आलम था हुज़ूर पाक सल्लम की नमाज के तवील होने का। अब सोचिए, सूरह बकरा आराम आराम से पढ़ा गया, सूरह आले इमरान आराम आराम से पढ़कर ख़त्म किया गया, इस तरह से पढ़ने के बाद तिलावत होने के बाद रुकू किया गया और रुकू में फिर उतना ही क़ियाम जितना तवील रुकू किया गया, फिर सजदा भी इतना ही किया गया, फिर दूसरी रकात में हुज़ूर पाक सल्लम ने उठकर फिर वही आराम से सूरह निसा की तिलावत फरमाई और उसके बाद अपनी दो रकातें मुकम्मल की। इस कदर इत्मीनान के साथ और इस कदर यकसुई के साथ और इस कदर दिलजमई के साथ ये इबादतें हुज़ूर पाक सल्लम अंजाम देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बाज़ दफ़ा हुज़ूर सजदे में लंबा लंबा क़ियाम करते हुए बगैर बेहिस व बेहरकत हो जाते थे, तो मुझे डर होता था कि कहीं हुज़ूर की जान तो नहीं निकल गई, हुज़ूर की रूह तो कब्ज़ नहीं होगी, तो मैं अपनी तसल्ली के खातिर हुज़ूर के कदम मुबारक के अंगूठों को हिलाकर देखा करती थी, फिर उसे अंदाज़ा लगाती थी कि नहीं सजदे में ही हैं हुज़ूर पाक सल्लम। तो इस कदर सुकून के साथ में, दिलजमई के साथ में, बगैर किसी हरकत के, बगैर लायानी में मशगूल हुए। हमारी नमाज़ें क्या हैं, हमारी नमाज़ों के अंदर हम नफिल तो छोड़ो, हम फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर 5 मिनट इत्मीनान से खड़े नहीं हो पाते, दाढ़ी में हाथ जा रहे हैं, कपड़ों से खेल रहे हैं, जब भी उठे रुकू से उठे तो दोनों हाथ से कुर्ता सीधा किया जा रहा, सजदे से उठे तो दोनों हाथ से कपड़ा सीधा किया जा रहा, कुर्ता सीधा किया जा रहा, कभी कान खुजा रहे हैं, कभी नाक खुजा रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा, कभी टोपी सही की जा रही, वगैरह वगैरह 10 किस्म की हरकतें। फिर बैठ ठहरे हुए कोई दाएँ झुल रहा, कोई बाएँ झुल रहा, सीधा बिल्कुल नमाज के अंदर खड़ा होना है, कोई यूं खड़ा हो जाता है, कोई यूं खड़ा हो जाता है, इस तरह खड़े होने की इजाज़त नहीं है। वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के आगे सीधा खड़ा होना है, अदब से खड़ा होना है और खुशू खुजू की हालत के साथ, के देखने से लगे कि अल्लाह के सामने खड़ा है, इस हालत में खड़े होने का हुक्म है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तवील क़ियाम किया करते थे और वो तिबालत हुजूर को यकसुई से माने नहीं थी कि लंबा क़ियाम तो कर रहे हैं लेकिन कभी दाएँ झुल रहे हैं, कभी बाएँ झुल रहे हैं, इस तरह था नहीं था। घंटों क़ियाम हो रहा और उसी हालत में, घंटों रुकू हो रहा, आधे आधे घंटे पौन पौन घंटे का रुकू हो रहा और उसी हालत में सजदा हो रहा, उसी हालत में। ये चीज़ें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेने। दूसरी बात यहाँ इस हवाले से ये है कि हुजूर इतनी तवील रकातें पढ़ा करते थे। गौर करने का मकाम है कि इतनी तवील रकातें फ़र्ज़ की नहीं पढ़ी हुजूर ने। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ें, खुद हदीस में भी यह मज़मून मौजूद है, मन अम्मा मिनकुम सलात फलयुख़फ़्फ़, कि जब नमाज पढ़ाओ तो फिर बूढ़ों की रियायत करो, जो कम उम्र है उनकी रियायत करो, जो हाजतमंद आए हुए हैं उनकी रियायत करो, बीमारों की रियायत करो। इस वास्ते हुक्म दिया गया फलयुख़फ़्फ़, हल्की नमाज पढ़ना है कि जिसके पढ़ने से बोझ नहीं महसूस हो, दोबारा आने के लिए आदमी सोचने पर मजबूर ना हो कि लंबी नमाज पढ़ी जाती है, भाई यहाँ जाकर क्या करें। लंबी नमाज और छोटी नमाज का मेयार क्या होना चाहिए, ये गौर की, ये समझने की बात है। हमारे नज़दीक लंबी नमाज वो है जिसमें कुलहुल्ला से हटके पढ़ा गया। अगर कुलहुल्ला पढ़ा गया तो वो छोटी नमाज है, इन्ना आतिना कल कौसर पढ़ा गया वो छोटी नमाज है, ये दोनों सूरतें या इस जैसी सूरतें उसके अलावा कुछ और पढ़ा गया तो वो लंबी नमाज है। लंबी और नमाज होने का और छोटी नमाज होने का, मुख्तसर होने का और तवील होने का भी मेयार है। 5-5, 5.5-5 पारों के मुकाबले में एक पारा भी मुख्तसर है और इन्ना आतना के मुकाबले में एक पारा भी ज़्यादा है, तो अब हम किसको तवील बोलेंगे, किसको लंबी नमाज बोलेंगे और किसको मुख्तसर नमाज बोलेंगे। उसका मेयार ये है कि 5 नमाज़ों में से हर नमाज में किस किस्म की कौन सी सूरतें पढ़ना है, ये भी रिवायतों में आया है। उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, तिवाल मुफस्सल, अवसात मुफस्सल, किसार मुफस्सल। सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरुज तक की जो सूरतें हैं वो तिवाल मुफस्सल कहलाती हैं, वो फजर में और जहर में पढ़ना है। सूरह हुजरात पारे 26 का जो सूरा है वहाँ से लेकर पारे 30 का जो सूरह बुरुज व समाई ज़ातिल बुरुज है वहाँ तक की सूरतें तिवाल मुफस्सल का नाम देते हैं इनको, ये पढ़ना सुन्नत है। और सूरह बुरुज से लेकर सूरह बय्यिना तक व समाई ज़ातिल बुरुज से लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब तक ये औसात मुफस्सल में आता है। ये औसात मुफस्सल का पढ़ना असर में और ईशा में सुन्नत है, असर में और ईशा में ये पढ़ना है, और मगरिब में सूरह बय्यिना से लेकर सूरह नास तक की सूरतें। तो ये जो मेयार मुकर्रर किया गया है ना कि फजर में इतना पढ़ें, जहर में, फजर जहर में इतना पढ़ें, असर ईशा में इतना पढ़ें और मगरिब में इतना पढ़ें, ये पढ़ना मुख्तसर सी नमाज़ें पढ़ना है, और इनको छोड़ना या इनके बराबर नहीं पढ़ना, ये नमाज़ों को तवील करना या ख़िलाफ़ सुन्नत करना है। अब अगर सूरह हुजरात जो 4 सफ़ों का है वो भी किसी ने पढ़ा तो लंबी नमाज नहीं हुई, सूरह काफ़ किसी ने पढ़ा वो 4 सफ़ों का है वो पढ़ा तो वो भी नमाज लंबी नहीं हुई। तो नमाज का लंबी या छोटी होना ये हमारे ऊपर नहीं है, वो सुन्नत रिवायतों के अंदर जो मज़मून आ गया है उसमें कमी बेशी अगर हम करेंगे, उस पर अगर इजाफा करेंगे तो फिर वो लंबी नमाज़ों में आएगा। तो हम इसको समझें। बहुत सारे लोग इमामों को वैसे ही कभी मजाहन कह देते हैं, कभी हकीकतन नहीं जानने की वजह से कह देते हैं कि मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ाएं। मुख्तसर सी नमाज खिलाफ़े सुन्नत करके पढ़ें, फ़ायदा क्या है? मगरिब के अंदर अगर आप सूरह बकरा पढ़ लें बेशक नमाज भी तवील हो गई, खिलाफ़े सुन्नत भी हो गए। और अगर आप दूसरी नमाज फजर के अंदर पढ़ लें, 4 सफ़े पढ़ लें, 2 सफ़े पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है, ये तो सुन्नत के बिल्कुल आयन मुताबिक। जुमा के दिन की सुन्नतों में अमूमन जुमा के फजर की सुन्नत में यह बात आती है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह दहर और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ते थे। पहली रकात में अलिफ लाम मीम सजदा पूरा, 13 लाइन की कुरान से ये 4 सफ़े बनता है, और सूरह दहर पूरा 13 लाइन के कुरान से ये 3 सफ़े बनता है, तो पूरे टोटल 7 सफ़े हैं। तो जो नबी ये फरमा रहे हैं कि जो इमामत करे वो हल्की नमाज पढ़ाए, वो नबी 7 सफ़े पूरे कुरान पढ़ा रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि 7 सफ़े भी पढ़ना अगर किसी मौके से पढ़ा गया तो वो तवील में नहीं आता, वो सुन्नत के ऐन मुताबिक। अलगरज हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तवील तवील क़ियाम फरमाते थे, तवील तवील रुकू फरमाते थे, तवील तवील सजदा किया करते थे, और इस कदर यकसुई दिलजमई के साथ में लंबी लंबी रकातें हो रही हैं कि हरकत का नामो निशान नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इतनी लंबी लंबी नमाज़ें आप पढ़ते हैं, आप तो बख्शे बख्शे हैं, फ़र अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख़्खर, अगले गुना जो हुए नहीं वो भी माफ़, पिछले गुना जो आगे होने हो सकते हैं वो जो होने वाले नहीं है लेकिन होने का इम्कान है वो भी माफ़। तो वहाँ गुना ही नहीं है, माफ़ी फिर भी अल्लाह ने दे दी है एजाज़ को बताने के वास्ते कि ये बख्शे बख्शाए लोग हैं, ये बख्शी बख्शाई हस्तियाँ, ये हमारे इतने मुकर्रब है। आपने फरमाया अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा, जिस अल्लाह ने मुझे इन इनामात से नवाजा है क्या मैं मुझे ये पसंद नहीं होगा कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनूं। जिस अल्लाह ने मुझे ये इनामात दिए कि अगले मेरे गुनाह वो भी माफ़ कर दिए, पिछले मेरे गुनाह वो भी माफ़ कर दिए, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ समझने की है, वो ये कि जन्नत का कोई ज़िक्र नहीं है, जहन्नम का कोई ज़िक्र नहीं है, आखिरत का कोई ज़िक्र नहीं है, अल्लाह की ज़ात मकसूद है, अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी मकसूद है, सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा मकसूद है। आपने नहीं फरमाया कि मुझे जन्नत में ज़्यादा दर्जे चाहिए, आपने नहीं फरमाया कि मैं जहन्नम के खौफ से, जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अगरचे कि ऐसा करने पर भी वो दीनदारी है, वो इखलास का हिस्सा है, लेकिन इखलास का एक आला दर्जा वो है जिसमें न जन्नत का जिक्र है, न जहन्नम का जिक्र है, न कुछ और है, बस अल्लाह की ज़ात है कि मैं तो अल्लाह का बस मुकर्रब और महबूब और पसंदीदा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा। यहाँ पर एक चीज़ ये देखने की है कि हम जो भी काम करते हैं, इबादतें बिलखसूस इखलास के साथ अंजाम देने की आदत होना ये बहुत ज़रूरी है। इखलास के बग़ैर कोई भी काम, नियत, नियत अव्वल तो नियत होनी चाहिए किसी भी काम में इबादत की, और फिर उस नियत में इखलास होना चाहिए। नियत नाम है दिल के इरादे का। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज आकर आप शुरू हो गए, आपकी कुछ नियत नहीं है कि कौन सी नमाज़ है, सुन्नत है, नफिल है, फ़र्ज़ है, उसका सवाब ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का वो, क्योंकि नीयत नहीं होगी तो अमल बेकार हो गया। नीयत तो है लेकिन कुछ अजीब व गरीब किस्म की नीयतें लोगों की हुआ करती हैं। अगर उस किस्म की नीयतें हैं तो ऐसी सूरत में उसका, उस अमल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस नीयत में रिया शामिल होगा, जिस नीयत में नमूद शामिल होगा, जिस नीयत के अंदर दुनियावी कोई मकसद होगा, जिस इबादत के अंदर और जिस नीयत के अंदर दुनियावी कोई मकसद शामिल होगा, वो बिल्कुल लायानी है, वो नहीं करने के बराबर है, बल्कि वो वबाल जान बन जाने वाला है। अगर नीयत में फ़ुतूर है, दुनियावी मकासद शामिल हैं, जैसे हम किसी के साथ में साफ मामला करते हैं ताकि आगे चलकर हमें इस वास्ते नेक सीधा मामला नहीं करते कि हुक्म मिला है साफ मामला करने का, मामला साफ़ रखने का, लेन देन साफ़ रखने का, बल्कि इस वास्ते करते हैं कि इससे कोई और हमें दूसरा फ़ायदा भी उठाना है। ये मामला हम किसी से ठीक ठाक कर रहे हैं, ये लेन देन ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे बड़ा मामला उसके साथ में करना है, अगर इसमें गड़बड़ करेंगे तो वो दूसरा मामला हमारे साथ नहीं करेगा, वो दूसरी डील हमसे नहीं करेगा, इसलिए पहली डील सही कर रहे हैं। तो ये पहली डील अगर इस नीयत से की जाती कि मामलात को साफ़ रखने का हुक्म है तो सवाब था, दीन था, इताअत थी, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी का हिस्सा था वो। लेकिन अगर उसको दूसरी डील हमको मिल जाए इस नीयत से किया गया है तो ये दुनियावी मकसद शामिल हो गया, इस वास्ते उसका कोई सवाब नहीं, बल्कि ये जो बदनीयती की गई है उस पर वबाल भी मिल सकता है। पहली डील पे जो बदनीयती की गई है वो वबाल जान भी बन सकती है। बंदा क़यामत के दिन आएगा अल्लाह के हुजूर और कहेगा कि अल्लाह मैंने आपके खातिर अपनी जान तक आपके रास्ते में लगा दी है, अपना खून का ख़तरा तक आखिरी आपके रास्ते में बहा दिया है, मैंने इल्म हासिल करके अल्लाह लोगों में आप फैलाया है और मेरे अल्लाह आपने मुझे बहादुरी दी थी, जज्बा अमल दिया था और क़ुव्वत दी थी, मैंने इसको आपके रास्ते में सर्व किया है। अल्लाह फरमाएंगे तुमने ये सब बेशक किया है लेकिन इसका बदला तुम जो चाहते थे दुनिया में वो तुमको मिल गया। बाज़ बंदों से जो रियाकार थे, जो गलत नीयतें अल्लाह की बंदगी के अलावा कोई और नीयत रखते थे अपने अमाल में, उनसे यही कहा जाएगा, उनको बोला जाएगा कि तुमको तुम्हारी नीयतों का, तुम्हारे अमाल का बदला दुनिया में मिल गया, तुम शोहरत चाहते थे वो मिल गई, तुम कुछ और चाहते थे तुमको वो मिल गया, लिहाजा अब यहाँ हमारे पास तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इखलास होना ज़रूरी है। हत्ता के बुजुर्गान दीन ने यहाँ तक फरमाया है समझाने के वास्ते, अगरचे वो इखलास का आला मकाम है, कि जन्नत और जहन्नम का हमारे भी हमारे सामने नहीं होना चाहिए जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हों, बल्कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। जन्नत भी हम मांगे अल्लाह से तो इस वजह से कि वो अल्लाह की नेमतों का मजहर है, अल्लाह की रहमतों का मजहर है, और जहन्नम के से हम पनाह मांगे तो इस वजह से कि अल्लाह के कहर का मजहर है, अल्लाह के गज़ब का मजहर है। एक बुज़ुर्ग की वफ़ात का वक्त आया तो बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक किसी किसी के साथ उनके मखसूस अहवाल होते हैं, तो उनके सामने उनकी आखिरत में जो उनका मकाम था, जन्नत में उनका जो दर्जा था, वो उनको दिखाया गया, ला दिया गया। तो उन्होंने नज़र फेरते हुए कहा कि इनका न मंजिलती फिल हुब इंदकुम मा कद रईतु फ़क़त ज़य्यअतु अय्यामी, कि ये जो दिखाया गया मुझे, अगर मेरी ज़िंदगी, मेरे जद्दोजहद और मेरी अमाल, मेरे इबादतों का सिला ये है तो फिर मेरी तो इबादत ज़ाया गई। वो जन्नत को देखकर फरमा रहे हैं कि अगर मुझे मेरे अमाल के सिले में ये दिया गया तो मेरी इबादत ज़ाया हो गई। فرمائے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی ذات چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے. تو وہ غلبہ حال میں ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جنت کی طلب نہیں کرنا ہے، نہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب کا حکم دیا اور خود مانگ کر دکھایا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگی اور مانگ کر مانگنے کا حکم دیا، ونعوذ بک من سخطک والنار. تو ہم کو بندے بن کر رہنا ہے. وہ ان کے غلبہ احوال تھے، بزرگوں کے ساتھ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ ان کے حد تک معذور ہوتے ہیں، یعنی ہم اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کو غلط نہیں بولیں گے، کیونکہ غلبہ حال میں بندہ معذور ہوتا ہے. اور پھر ہم ان کی تقلید بھی نہیں کریں گے، ان کے پیچھے ان کی وہ بات کو اپنائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے حضور کا نمونہ موجود ہے، حضور کا قول موجود ہے، حضور کا فعل موجود ہے. تو دونوں چیزوں کی رعایت کرنا یہ اہل سنت کے موقف میں اور ان کے مزاج میں اور ان کے منشے میں اور ان کی اتباع شریعت کا جو ذہن ہے اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں. حق تعالی ہم سبوں کو اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے، اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.